ओम शांति। आज हमारे बीच एक विशेष व्यक्तित्व, हमारी बहन डॉक्टर उषा किरण जी। आपके पास राजयोग का एक लंबा अनुभव है, 45 वर्षों से आप राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और 35 वर्षों से दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है वहां पर आप एज अ कार्डियक एनेस्थीसिया की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और वहां मेडिटेशन रूम बना हुआ है और आप राजयोग का रिसर्च उनके ऊपर करते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो राजयोग के अभ्यास से ही ठीक हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। आपने ऐसा एक प्रोजेक्ट वहां पर चलाया है और इसी विषय में आपकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई हैं और बहुत सारे पेशेंट लाइक हेडेक है, टेंशन है, डिप्रेशन है, सर दर्द है, उसको राजयोग से ही वो अपने आप को हील करते हैं। इसमें आपने बहुत काम किया है और अभी तक हजारों पेशेंट ऐसे हैं जो इससे लाभान्वित हुए हैं। और आप देख रहे हैं, आप बहुत सिंपल हैं, सादा जीवन और उच्च विचार आप उनके मुख से ही सुनेंगे क्योंकि हम बहुत वर्षों से वुमेन विंग में आपको सुनते रहते हैं। आप जॉब में होते हुए भी इस राजयोग का प्रैक्टिस करते हैं और लोगों के ऊपर उसका कैसे अभ्यास करते हैं वो आप बताएंगे। और जो हमारी वर्कशॉप होने वाली है उसके जो विषय हैं आप उसके ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। तो हम करतल ध्वनि से डॉक्टर उषा किरण बहन का बहुत 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 हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
थैंक यू सो मच। ओम शांति। नमस्कार। तो आज का शुभ दिन हम सबके लिए कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा ही रहना चाहिए। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। हम कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? वेरी गुड। इसको कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हायर एजुकेशन, अकेडमी है ना, ये अकेडमी में हम कहाँ पढ़ने आए हैं? बहुत हाई एजुकेशन की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं। देखिए, है ना, गॉडली यूनिवर्सिटी है, स्वयं परमात्मा ने हमारे लिए खोली है। तो इसलिए इसमें जरूर आना चाहिए और सबको इसका फायदा लेना चाहिए। चलिए, तो हम टॉपिक, क्योंकि आज हमारी वर्कशॉप होने वाली है और वर्कशॉप में क्या होता है, शॉप भी है और वर्क भी है, होता है ना, क्योंकि दोनों काम इकट्ठे होने हैं। इसका मतलब हर एक ने अपना अपना इनपुट देना है, कुछ काम करना है। और क्या टॉपिक्स पे काम करना है आपको टॉपिक मालूम है ना? किसको टॉपिक मालूम है वर्कशॉप की? चारों टॉपिक। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? Who knows? सबसे पहला टॉपिक याद है किसी को? किसी को नहीं याद? यस, स्पिरिचुअलिटी इनटू मॉडर्नाइजेशन है। ये प्लेस मॉडर्न है या पुराने तरीके का है? कैसे कह रहे हो आप मॉडर्न? मॉडर्न किसे कहा जाता? अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर क्या बोलते हो, क्या होती है ड्रॉप, क्या मैं नहीं बोलूंगी वो वर्ड, वैसी ड्रेस पहनना, सोच मॉडर्न, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, है ना। पर लोग तो यही समझते हैं कि आज तो मैं मॉडर्न कपड़े पहन के जा रही हूं। क्या कपड़े पहनने से मॉडर्न हो जाते हैं? है ना, कपड़े पहनना तो असेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो तो अच्छी बात है, अच्छे पहनने चाहिए, साफ सुथरे पहनने चाहिए, है ना, जो एलिगेंट लगे वो पहनने चाहिए, जो अपने को जचे वो पहनने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, है ना। तो क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, फिर किसको कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मॉडर्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इंग्लिश हिंदी बोल लेते हैं इकट्ठे, इसको इंग्लिश बोलते हैं, एच आई, है ना, यानी हमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, दिस इज मॉडर्नाइजेशन, जरूरी नहीं है, है? तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि अपनी समझ को घर रख के आना, चलते फिरते सड़क कपड़े अच्छे पहनते हुए, सब मॉडर्नाइजेशन की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने अपनी समझ को भी तो बढ़ाना, दूसरे के लिए सत्कार भी तो रखना, रिगार्ड भी तो देना, है ना। एक दूसरे को तू तो कहना, ये मॉडर्नाइजेशन है। सच सच बताइएगा, सच सच, कितनी वाइफ्स अपने हस्बैंड को तू कहते हैं और कितने हस्बैंड अपने वाइफ को तू कहते हैं। तू भी कॉमन हो गया है। तू क्या करते हैं, तेरे को अक्ल नहीं है, ऐसे ऐसे है कि नहीं है कन्वर्सेशन, है ना। बच्चे को कहेंगे बेटे आप, और कहेंगे ए नीरज तेरे को अक्ल नहीं है, किससे बात हो रही है, आप बेटे आओ। ए नीरज पहले ना स्कूल का टाइम हो गया, अब बच्चा क्या सीख रहा है, आप बेटे आओ या नीरज स्कूल का टाइम हो गया, तेरे को अक्ल नहीं है, कौन सी टर्मिनोलॉजी ठीक है। दिखावे से मॉडर्नाइजेशन नहीं बनती है, मॉडर्नाइजेशन दिल की आवाज है। जितनी मॉडर्नाइजेशन यहां पर है वो कहीं नहीं है। मॉडर्नाइजेशन इज नॉट डिसरिस्पेक्ट। अगर हम आधे अधूरे कपड़े पहनते हैं, डिसरिस्पेक्टिंग माई सेल्फ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर दूसरों को दिखावा करते हैं और अंदर कुछ और है, तो ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है, ये अपने को धोखा देना है। और आज दुनिया सब कुछ होते हुए, खाने को, पहनने को, घर, समाज, सब कुछ, रिलेशन होते हुए भी कैसा लग रहा है, हैप्पी हैप्पी हैं? कितने परसेंट लोग हैप्पी होंगे दुनिया में, कितने हैप्पी होंगे आप बताइए, कितने हैप्पी हैं? बहुत है। पहले कहते थे वो लखपति है, अब तो करोड़पति, अब तो करोड़, तो क्या छोड़ ही दो बातें ये वाली, तो जितनी ज्यादा इनकम उतनी हैप्पीनेस। बल्कि मेरे को लगता है जो बाहर सड़क पे पार्कों में मेड्स बैठी होती है ना, वो ज्यादा हैप्पी है कि नहीं है, वो थोड़ा कमाने में भी खुश है। और हमारी हालत देखो, पर उनकी प्रॉब्लम कुछ और है। उनका रात को हस्बैंड आता है, अल्कोहल पीता है, जो पिटाई करता है, वो सुबह फिर अपने काम पे आ जाती है, वो पैसे भी ले जाते हैं। तो हिम्मत है नारी की बहुत जबरदस्त है कि नहीं, हिम्मत बहुत बड़ी हिम्मत है। कैसे वो फिर काम पे आ जाती हैं और रोती भी नहीं है, यहां बैठ के ग्रुप में बैठ के हंस रही होती हैं। देखो ना, तो भगवान ने नारी को कितना अच्छा बनाया है। और यहां तो आपने देख ही लिया, एडमिनिस्ट्रेशन भी कौन रन कर रहा है, वुमेन। ये तो है वुमेन इंस्टीट्यूशन। 1936 में ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा ने संकल्प दिया कि नारी को आगे बढ़ा दो, और नतीजा देखो कितना अच्छा हुआ। और मैं आपको अपने जीवन का एक्सपीरियंस बताऊं। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी की अभी हम बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की। मैं एक छोटी सी आपको क्लिपिक दिखा दूं, जो आजकल सोशल मीडिया पे तो सभी बैठते हैं, और कभी कभी तो मैं बंद करनी पड़ती है सारी क्लिपिंग्स कि ये अच्छी नहीं है। एक छोटी सी आप देखिए, दिखाएंगे। हाँ, एक छोटी सी क्लिपिंग दिखा दीजिए, मैं बैठ जाती हूँ।
हमारा ऑर्डर ले ले आके।
एक्सक्यूज मी,
ओहो, वेटरेस को इंग्लिश बोलने भी आती है।
देखो, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है।
मिसअंडरस्टैंडिंग? वेटरेस सुनो, तुम यहाँ पे चुपचाप हमारा ऑर्डर ले लो, यहाँ पे अपनी इंग्लिश मत झाड़ो।
मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, मैं यहाँ की कोई वेटरेस नहीं। अगर आपको ऑर्डर देना है तो अंदर जाओ, वेटर को दे दो, मुझे नहीं।
अच्छा, इन जैसे लोग पहले छोटी मोटी जॉब ले लेते हैं और फिर इन्हें वेटर्स बुलाओ तो इन्हें बुरा लग जाता है। ये 50 रुपए की साड़ी पहन के क्यों घूम रही है तू? साड़ी पहन ली है तो खुद को कहीं की महारानी समझ रही है? वेटरेस है ना, ऑर्डर ले चुपचाप से, मेरा दिमाग खराब मत कर। और वैसे तेरी 50 रुपए साड़ी यहाँ पे सूट नहीं कर रही है। मेरा आउटफिट देखा है? कपड़े देखे मेरे? आजकल लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, और लड़कों को भी ऐसे ही कपड़े पसंद आते हैं। कभार जैसे साड़ी पहनने वाली लड़कियां पसंद नहीं आती किसी को भी। तो चुपचाप अंदर जा और हमारा ऑर्डर लेकर आ।
सुनीता मैम राइट, मंडल इंडस्ट्री के सीईओ। मैम आई एम योर बिग फैन। मैम मैं आपको कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ। मैम मैंने आपके बारे में सब कुछ रिसर्च किया है कि आपने कहां से कहां तक अपनी कंपनी को लेके गई हैं। मैम मैं आपकी कंपनी में काफी टाइम से इंटरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैम क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ?
या श्योर।
थैंक यू सो मच मैम।
यू आर वेलकम।
सॉरी मैम, मैं आपको पहचान ही नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि आप मंडल इंडस्ट्री के सीईओ हैं। मैम आपको नहीं पता मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए कब से वेट कर रही हूँ, मैं इसी के लिए तो पढ़ाई कर रही हूँ।
एक मिनट, क्या कहा तुमने, हमारी कंपनी?
यस मैम।
तुम जैसे लोग ना हमारी कंपनी में तो या हमारे देश में भी रहना डिजर्व नहीं करते, और बहुत शर्म आती है ना तुम्हें अपने देश पर, अपनी देश की संस्कृति पर। पर मुझे अफसोस होता है तुम पर और तुम्हारी सोच पर। पर क्या खराबी इन कपड़ों में? हाँ मैं रहती थी विदेश में, पर विदेश में रहने के बावजूद भी मैं अपनी संस्कृति को नहीं भूली, अपने पहनावे को नहीं भूली। लेकिन तुम अपने देश में रहने के बाद भी अपनी संस्कृति को भूल चुकी हो। शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पर। और पहनती हो तुम ये वेस्टर्न कपड़े क्योंकि तुम्हारी ये पर्सनल चॉइस है, पर मैं तो तुम्हें जज नहीं कर रही ना, तो तुम कौन होती मुझे जज करने वाली? तुम जैसे लोग चार पांच दिन कॉलेज गए नहीं, बस हवा लग जाती है ना तुम लोगों को।
सो सॉरी मैम।
तो अब आप समझ गए हैं मॉडर्नाइजेशन क्या है, एंड हाईएस्ट मॉडर्नाइजेशन यहां है। जो लेटेस्ट विचारधारा चल रही है वो ये है कि अपने परिवार में अपने आप से सास करिए, और वो हमें रखना है अपने अंदर सुख शांति प्रेम आनंद और इनर पावर्स। इनर पावर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ड्रेस की कोई बात नहीं है, जो भी जिसकी चॉइस है, तो हम लोग इनर पावर्स की बात करते हैं। एंड मैं आपका अपना एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। कई बार हम समझते हैं कि हमारे अंदर इनर पावर्स बहुत हैं, एग्रीड 100% एग्रीड कि हमारे अंदर एक विल पावर है, हमने दृढ़ता से कुछ अचीव किया है। मैं आपको अपनी लाइफ का अनुभव सुनाती हूँ। एक बार घर में कुछ बात हुई, परिवार के साथ आपको चलना पड़ता है ना, दूसरा टॉपिक पारिवारिक भी तो है, सेकंड टॉपिक है ना परिवार, परिवार में आपस में मिलजुल के चलना। और मेरी मदर को, क्योंकि मेरी मदर ने मुझे ज्ञान में लाया, मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, स्कूल पढ़ती थी, तो मैं मदर को देखती थी, उनके अंदर बहुत चेंज हुआ। वो काफी मॉडर्न थी, मॉडर्न मतलब उस जमाने में कहती थी लड़कियों की शादी नहीं करूंगी जब तक ये पैरों पे खड़ी नहीं होंगी, पढ़े लिखेंगी नहीं। तो मैं तो उसको बहुत मॉडर्न कहती हूँ उस जमाने में, इन 90s, मैं 53 बॉर्न हूँ, इमेजिन कर सकते हो। उस जमाने में माँ ऐसे कहती थी कि मैं बच्चियों को पढ़ाऊंगी, वो जमाना अब खत्म हो गया। पर एक मॉडर्नाइजेशन जो उसमें आया कि वो ब्रह्मा कुमारी से मिली, और जो उनके अंदर तेज था ना भाव में, वो तेज खत्म हो गया। और वही बात कहती थी, बड़े प्यार से कहती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जैसे ही मैंने इस ज्ञान को सुना, मैं शायद 9th-10th में होंगी, और मेरा डिटर्मिनेशन तो मुझे डॉक्टर बनना है। फादर बैंक में थे, उन्होंने बोला देखो हमारे पास प्राइवेट में देने का पैसा नहीं है। मैंने बोला ठीक है मैं मेहनत करूंगी, एंड भगवान की कृपा से बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ। जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू की, कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ गई और मेमोरी बहुत अच्छी हो गई। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडमिशन मिला, 300 रुपया फीस थी सारे साल की, वही MD मिल गया। ये तो भगवान की कृपा थी, क्योंकि सब हर वक्त भगवान से सुबह 4 बजे बात होती थी, यहाँ तक कि लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे इसको ऊपर कोई बैठा हुआ है जो क्वेश्चन पेपर बता देता है, और सच में होता है। एग्जाम्पल बताती क्या हुआ, आपको छोटी सी बात बताती हूँ। सर्जरी की इतनी मोटी किताब थी, और जैसे मैंने उठाया, मुझे सर्जरी बिल्कुल मन से अच्छी नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों, किताब गिर गई, चैप्टर निकला टेटनस, 25 पेज का चैप्टर, टेटनस बीमारी होती है ना, और वो भी सर्जरी में। मैंने कहा आए हाय पढ़ लूं, तो मुझे अंदर से आवाज आई भगवान की जल्दी से पढ़ ले, और वो पढ़ लिया। और जब मैं सुबह गई एग्जाम के लिए, सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टेटनस 20 नंबर का। तो कितनी मदद करता है भगवान। तो ऐसे करके हर जगह मदद मिली। तो वो मेरी माँ जो मेरे लिए एक रोल मॉडल थी, उसने एक बार कह दिया, मैं इतनी यंग होंगी, ये बात है आई थिंक अर्ली 90s की, बस भी अराउंड 35 years ऑफ एज ऐसे करके थी। तो मैं गई, तो मेरे को बोला कि बुआ जी की बेटी बीमार है, देखो तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम 2-3 दिन की छुट्टी लो, हिमाचल में चली जाओ, उसका मैसेज आया है और कोई नहीं जा सकता। मैंने कहा अब माँ कहे और ना कर दूं, करना पड़ता है ना कभी कभी। हाँ कहते हैं कुछ नहीं करना, सुबह 5 बजे की बस लेनी है। तो भाई ने बोला मैं तुम्हें बस अड्डे में छोड़ दूंगा, तुम 5 बजे की पहली बस ले लेना। मैंने बोला ठीक है, मौसम भी ऐसे जुलाई अगस्त का था, अभी अंधेरा ही था। वो मुझे बस अड्डे में बाहर छोड़ के चला गया दिल्ली के अंदर। मैं अंदर गई, सामने बस खड़ी थी, मैंने पूछा, कहते हाँ यही बस जाएगी। मैंने भी नहीं बहुत किया, 5 बजे का समय, मैं अंदर बैठी, बस चल पड़ी। मैंने ये भी नहीं सोचा कोई और भी अंदर है कि नहीं है, ध्यान ही नहीं है, मेरे तो मेडिटेशन टाइम है। मैं बैठ गई अपना, तो बस अंदर ही अंदर घूमती है, पता नहीं किसी ने दिल्ली का पुराना वाला बस स्टैंड देखा है कि नहीं। तो अंदर ही अंदर में, मैं तो उस जमाने की बात करती हूँ ना, हम 72 प्लस, तो मैंने अंदर ही अंदर घूमती रही, फिर भी मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं तो अपने ध्यान में थी, ये भी नहीं देखा कि आगे पीछे कोई बैठा है कि नहीं बैठा, और अंधेरा सा था। तो मैंने क्या, अचानक से मेरी नजर सामने पड़ी ड्राइवर की तरफ, तो वो शीशे में उसकी मोटी मोटी आंखें, तो मैं सडनली झटके में आ गई, मैं कहां पहुंच गई हूं। अच्छा, तो जैसे मैंने देखा ना, तो मैं एक सेकंड तो मुझे झटका लगा, फिर मैं इधर उधर देखा, कोई नहीं है। और उसकी आंखें देख के तो मेरे को वो पिक्चरों के वायलेंट सीन जो होते थे ना, तो सेकंड भी नहीं हुआ था, तो मेरे को लगा अब क्या करूं। तो ऊपर से शिव बाबा की आवाज थी, तू कौन है? मैंने बोला मैं तो माँ दुर्गा शक्ति हूँ, अंदर ही अंदर मेरी बात हो रही है, मैं माँ दुर्गा शक्ति हूँ। तो कहते फिर क्या हो गया? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं माँ दुर्गा हूँ। तो इतने में फटाफट उसको क्या हुआ, ड्राइवर को फटाफट उसने दुर्गा की भेंटे लगाई और उसको शिव जी को नमस्ते कर रहा है और उसने गाड़ी आगे चला ली। देखो संकल्प आते, संकल्प किसने काट दिया? उसे तो उसके मन में आया हुआ था, जब मेरी एकदम घबरा गई थी, देख लिया उसने, और उसको भी भूल गया कि मैंने ना शिव जी वो शिव शंभू लगे होते हैं, ना पूजा की है, और ना मैंने दुर्गा का वो कराया है, और मैंने गाड़ी चला दी है। कैसे संकल्प संकल्प को काटता है, दिस इज स्पिरिचुअल पावर। और ये बहुत जरूरी, मैं आज की बात नहीं कर रही, आई वॉज वेरी यंग, 35-37 ईयर्स की। और दूसरी बात, मेरे को बाद में मेरे को लगा कि मेरा सबसे लकी, जब हम ट्रेवल करते हैं हम ऑर्डिनरी ड्रेस में ट्रेवल करते हैं, पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, आई वॉज अलोन, और अभी मैं थोड़ी ऐसी साड़ी पहन, मेरा वो साड़ी वैसी कॉटन वाली साड़ी, बिल्कुल स्टार्च लगी हुई जैसे बड़े नेताओं की साड़ी होती है, और ऐसे करके सुबह सुबह पहन के गई हुई थी फुल ड्रेस। तो मुझे लगा अब तो माँ दुर्गा रखे रखना, अपने आप को घबराना नहीं, किससे फालतू बात नहीं करना। और पूरी ट्रेवल में मुझे इतनी शांति और इतना रिलीफ मिल रहा था कि मैं माँ दुर्गा पूरे ट्रेवल में जा रही हूँ। तो ऐसा नहीं सोचो कि मॉडर्नाइजेशन और आज के जमाने में इस स्पिरिचुअल पावर की सब यंग लड़कियों को जरूरत है, क्योंकि अब जमाना बहुत खराब आ गया है। तो ये हो गई पारिवारिक परिस्थितियों में, बल्कि मैंने एक भी आकर बार माँ को नहीं कहा कि आपने मुझे कहाँ भेज दिया, कैसे लोग हैं, क्या करना चाहिए था। हाँ, पर मैं ये समझदार होगी, एक तो फुल ड्रेस जाना चाहिए हमेशा, कहीं भी ट्रेवल करते हो कैजुअल में कभी ट्रेवल नहीं करना चाहिए, और सुबह सुबह उठ के 5 बजे चल दिए, नहीं, हमेशा अपनी डिग्टी मैंडेट करते हुए भगवान को साथ लेके ट्रेवल करना चाहिए। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, वर्किंग ऑफ वुमेन, होनी चाहिए वर्किंग ऑफ वुमेन की नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ ने कहा था लड़की जब तक पैरों पर स्टैंड नहीं होगी उसकी शादी नहीं करनी चाहिए कभी भी, गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा था, होना भी चाहिए। आज के जमाने के अनुसार फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अनप्रिडिक्टेबल जमाना है, अनप्रिडिक्टेबल क्यों है वो जब आप ब्रह्मा कुमारी इसमें लेसन करेंगे तो आपको पता लगेगा, ये हमारे ही पिछले कर्मों के बीज जो थे अभी वो फूट रहे हैं, अभी उसका फल आ रहा है। अच्छे भी कर्म किए हैं, वास्तव में हमें कर्म की परिभाषा ही नहीं पता कि श्रेष्ठ कर्म कौन सा और खराब कर्म कौन सा। हमको लगता है हम तो सब अच्छे ही कर रहे हैं, खराब करते ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं कि श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, ऑर्डिनरी कर्म कौन सा है, और सब ऑर्डिनरी कर्म कौन सा है, तो कैसे हैं। अच्छा, अब प्रोफेशन में आप में से कोई है जो प्राइवेट में काम करते हैं, है ना, और कुछ गवर्नमेंट में भी करते होंगे। हर जगह बॉस लेडीज के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है ना, और देर इज लॉट ऑफ जेंडर डिफरेंसेस गवर्नमेंट में भी, उसमें भी, कहीं पे भी अगर लड़का लेट आएगा तो कोई बात नहीं, लड़की आएगी तो सारे लोग देख रहे होंगे इसको, देखा लेट आई ना, अब बॉस में जाके बॉस को करेगी कुछ कुछ कान में, तो सारा दिन टॉपिक क्या चलता है ना, और बॉस भी कहता है मैंने कुछ कहा ना ये रो पड़ेगी। ये क्या सिस्टम है, वुमेन को इतना वीक क्यों समझा जाता है? जितनी वुमेन स्ट्रांग है ना, गॉड शिव शक्ति परमात्मा का आधा परमात्मा तो नारी है, दिखाते हैं ना दो रूप उसके। तो हम क्यों अपने आप को समझते हैं, हम क्यों अपने आप को कॉम्प्लेक्सेस में लेते हैं, हम क्यों सोचते हैं कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है? कोई नहीं मजाक उड़ाता, हम अपने को स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। मैं आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ, बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ जो मेरी लाइफ के अंदर ऐसा जंप लगाया, मेरी सोच ही सारी बदल दी। मैं गवर्नमेंट सेटअप में थी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। जब मेरे को वहां जॉब मिला तो लोगों ने कहा तू कहाँ जा रही, तुझे पता है? मैंने कहा मैं तो खुश हो रही हूँ जॉब मिल रहा है मेरे को। बोले नहीं, दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंसेज। मैंने कहा क्या कह रहे हो? कि जितने हाई लेवल से सारी पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगा कोई बात नहीं। अच्छा एक, मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मैं मेडिटेशन कराती हूँ। बोला ठीक है एक रूम ले लो, अब मेडिटेशन करा लो। मैं मेडिटेशन करा रही थी, उसमें एक सिस्टर थी जो इंचार्ज थी, वो मेरे साथ बैठी थी, तो उसको करा रही थी। वो शायद कुछ बात होगी उसके प्रति, तो बॉस आया, बॉस ने देख लिया कि मैं कुछ बात कर रही हूँ। अब उन्हें क्या पता बात क्या कर रही हूँ, या तो बैठो आके, है ना, तो या मेरे मेडिटेशन रूम को अच्छे से रूम बना दो। वो तो ऐसे ही थोड़ा टेबल था साइड था, मैं बात कर रही थी उससे। थोड़ी देर बाद एक लेटर आ गया, यू हैव बीन फाउंड डूइंग ए इनडिसिप्लिनरी एक्ट इन द हॉस्पिटल वर्किंग आवर्स, दिस इज अगेंस्ट द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द हॉस्पिटल। क्या सोचेंगे आप, वुमेन है ना इसलिए? नहीं, कुछ नहीं सोचा मैंने, उसको भी आया मेरे को भी आया। अब वो तो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो क्या करना चाहते, मेरे से तो किसी की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, और मैं तो ऑफिशियली ऑफिस के अंदर कर रही हूं ये काम, गलत नहीं कर रही हूं। अब क्या करो, सोचो, रो, बॉस के पास जाओ, लेटर का जवाब दो। आप जानते हैं दादी गुलजार को, कोई जानता है दादी गुलजार? हाँ, आई एम बॉन्ड बाय हर माउथ ऑर्गन, उन्होंने मुझे पहला ज्ञान सुनाया था, और उनके ये वरदान था जीवन में कभी बुराइयों से न डरना, बुराइयों से डरना मतलब बुराइयों से दूर रहना। मुझे वो दादी गुलजार उस समय याद आ गए, पर मैं देखूं ये बुरा तो है ही नहीं, और लेटर भी मेरे क्या हो गया, लेटर आ गई तो उन्हें लेटर उठाई बंद करी और अपना मस्त हो गई। सब लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, चुपचाप जाके मेडिटेशन कराती है, लंच भी नहीं लेती है, ये करती है वो करती है, बड़ा अपने आप को समझती है, बड़ा आगे बढ़ेगी, टिपिकल आपस में कंपटीशन। मैंने कुछ परवाह नहीं की इस बात की। शाम को मैं ड्राइव करती सीधी पहुंच गई गुरजादा जी के पास, और फिर क्या हुआ, गुरजादा जी को बताया ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और पहली बार देखा, मैं शायद 25 मिनट्स बोली होंगी, और गुरजादा जी, मुझे था भगवान मेरे सामने बैठा हुआ, टोटल साइलेंट दृष्टि में, शायद मेरी 10 मिनट भी सुनने की कैपेसिटी नहीं है, मैं बीच में बोल उठती हूँ, फिर क्या हुआ क्या होता ही तो होता है, कुछ नहीं बोला उन्होंने 25 मिनट, और उसके बाद मेरे हाथ में पढ़ाई, अच्छा टोली ले लो। पर मैं ना नाराज थी ना परेशान थी, मैं तो बाबा ने भेजा ना वहां पे जॉब के लिए, बाबा ने किस लिए भेजा, गुरजादा जी ने कहा था तुम्हें इस सच्चे हॉस्पिटल में सेवा करनी है, तो मुझे तो सेवा करनी है, कुछ नहीं इसका मतलब कोई बात नहीं है, टोली दे दी। फिर मुझे कहते हैं ये तो तुम अपना काम करो, ये तो अहंकार है, चलो बात खत्म। उसके बाद मैंने कोई परवाह नहीं की, पर मैंने एक बहुत सुंदर काम किया, बाबा से सुबह 4 बजे उठ के बोला बाबा क्या करना है, बाबा ने कहा क्या करना है, तुमको करना है कहा तो ना सेवा करो, कहाँ सेवा कर रही हो, अरे सेवा के लिए तो ऑब्जेक्शन हुआ है, कहते कहाँ ऑब्जेक्शन हुआ है, तुम सेवा कर ही नहीं रही हो, कहा अच्छा क्या करना है। बोले तुम्हारा रिसर्च प्रोसेस जो चल रहा है क्योंकि मैं रिसर्च करती थी, डॉक्टर्स के पास ले जाती थी पेशेंट को, कमरे में दिखाती थी, उसका सारे टेस्ट, हार्ट से पहले कितना स्ट्रेस होता है, सब कुछ करती थी। बोले करो। मैंने देखा 2 दिन रह गए हैं और रिसर्च प्रोजेक्ट का ग्रांट मिलता है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्रांट दे रही है। मैंने उठा के लिख दिया राज योगा फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, और इस दौरान ये टेस्ट किए जाएंगे, और उसका बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बना के लिख दिया। अच्छा जी, मेरी जो अपनी बॉस थी मेरे साथ, मेरे से सीनियर, बोली तू पागल है क्या? लिखा क्यों, तेरी तो नौकरी जा रही है, तू लिख क्या रही है, इस योग से तो तेरी नौकरी जा रही है। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की। जिस बॉस से मुझे लेटर आया था उससे मैंने सैंक्शन लेनी थी इस प्रोजेक्ट की। अरे बाबा ने बोला है, मैं बाबा के पास बैठी बैठी रही बैठी रही, मन में कुछ चलने लगा। जैसे चलने लगा बाबा के लिप से ले, सच बता रही हूं, ब्रह्मा बाबा बैठे हुए शिव बाबा सामने अंदर, बाबा के लिप से ले और बोले साईं तुमने कराने मैंने। वो दिन मैं सीधी गई और जाके मेरे पास बाबा का यहां से पेन लेके जाना, बड़ा ऑस्पिशियस पेन है वो, जो भी यहाँ बाबा के पेन मिलते हैं, कोई कृष्ण का कोई लक्ष्मी, मेरे हाथ में था। मैं अंदर गई कि तुम, मैंने कहा कुछ नहीं सर, ये प्रोजेक्ट लिखा है राजयोगा के ऊपर, उसमें आपका रिकमेंड, आपको फॉरवर्ड करना है, रिकमेंड भी नहीं, मेरे से पेन लिया रिकमेंडेड। मैंने बोला सर इसके आप भी इन्वेस्टिगेटर हो मेरे साथ, ये तो कहाँ साइन करने, साइन करा दिए सारे साइन हो गए और राजयोगा के ऑफिशियल प्रोजेक्ट 37 लाख डिपार्टमेंट ऑफ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा दिया, 3 बंदे दिए वर्कर्स, इतने इतने बड़े PhD साइंटिस्ट, कि इनसे जब आप टेंशन हेडेक लोगों को होती है, सिर दर्द के मरीजों को, आप उनके टेस्ट कराओ और उनका देखो क्या कमी हुई है। और उस रिसर्च के अंदर पता लगा कि सिर दर्द, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। और क्यों होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, बीटा एंडोर्फिन कम हो जाता है। 4000 का टेस्ट था, सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, उसके पेपर छपे हुए हैं, आप डालो किसी गूगल में उषा किरण नाम और लिखो टेंशन हेडेक, सारे पेपर्स आ जाएंगे गूगल्स के अंदर पेपर उस जमाने के। तो बताइए मुझे लेटर आई थी वो मेरे लिए क्या थी, ब्लेसिंग थी कि नहीं थी? अगर वो लेटर ना आती मैं ये ऑफिशियल स्टेप ना लेती। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रूव किया कि राजयोगा मेडिटेशन इज ए साइंस, इज ए टेक्नोलॉजी, इज ए पार्ट ऑफ मेडिसिन। और उसके बाद जब ये लेटेस्ट 10-12 साल से योगा, ये आप देखते हो ना, आज तो हमारा भारत देश की एडमिनिस्ट्रेशन भी, मिनिस्टर्स भी यही कहते हैं कि योगा, प्राइम मिनिस्टर भी योगा कहते हैं, आयुष मिनिस्ट्री भी आई है। तो DST ने, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट को यूज कर रही है और स्पेशल ग्रांट दे रही है, और उस विभाग का नाम है सत्यम, SATYAM, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, इसके ऊपर रिसर्च करें सभी। और कोई भी हॉस्पिटल कहीं भी ये ग्रांट लेके साइंटिस्ट बुला के ये कर रहा है। अभी लेटेस्ट स्टडी हमारी बिहार पटना में शुरू हुई है, और वो किस पे हुई है, वो है ड्रग्स, ड्रग एडिक्शन कितनी जबरदस्त हो रही है सब जगह। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है कि इनको भी ठीक करो। ये सब गवर्नमेंट के साथ MOU साइन होते जा रहे हैं, इसका मतलब राजयोग कितना इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर माई इनर विल पावर टू बी इंक्रीज, पर मेरे प्रोफेशन में भी। हमारी मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको अभी उस समय वो यंग थे, और अभी बोलता है मैडम आपने जो सिखाया था ना राजयोग, और सिखाया कैसे था, बड़ा सिंपल, मुश्किल नहीं था, और अब मैं NDA में इस सर्विसेज में लगा हूं, मैं यहाँ IAS ऑफिसर हूं, कहते मेरी तो कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव हो गई। तो इट इज नॉट जस्ट फॉर 1%, जो यूथ है उनकी कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होती है, उनके फोकस इंक्रीज होता है, हमारा गुस्सा कम होता है, और गुस्से से होने वाली बीमारियां, सबसे अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो गुस्सा जो अंदर आ जाता है ना, जो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, उससे बीमारियां बहुत हो रही हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि मैं राजयोग सुन तो लेती हूं पर मेरे अंदर गया कितना। जब परिस्थिति आती है उस समय मैं आज का लेसन क्या था, परमात्मा याद करती हूँ, और कल का लेसन क्या था? आत्मा, क्या मैं आत्मिक स्थिति में होती हूँ? ये बहुत जरूरी है। जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे अंदर वो इनर पावर से हमारे अंदर वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद, और मेरे परिवार के अंदर भी बहुत खुशी आनी शुरू हो जाएगी, उनके लिए हम रोल मॉडल बन जाएंगे। फिर आती है बच्चों की बात। हम बहुत बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आज वुमेन किस फील्ड में नहीं है? बहुत आगे है, बहुत आगे है। पर कभी आप किसी अच्छे वुमेन से बात करो, अपने आप से भी पूछो, वी आर वेरी गुड डॉक्टर्स, वेरी गुड प्रोफेशनल्स, पर वेरी पुअर, वेरी पुअर पेरेंट्स, राइट और रॉन्ग? वेरी पुअर पेरेंट्स। पेरेंटिंग नहीं आती है हमको, कहते ना, बच्चा भी कह देता है आपको ये नहीं सिखाया था क्या? तो गुड पेरेंट्स बनने का क्या तरीका है? तो मैं अपनी माँ को हमेशा याद करती हूँ, माई माँ वॉज ए रोल मॉडल, है ना? तो टू बी ए वेरी गुड पेरेंट्स आनंद सीखना है तो ब्रह्मा कुमारी से सीखो कि सच्चा प्यार होता क्या है, हम सच्चा कल्याण बच्चों का करते कैसे। और अभी ये सच्चाई बहुत जबरदस्त पेश हो चुकी है कि पर्सनैलिटी ऑफ ए चाइल्ड इज डेवलप्ड बिफोर द एज ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल पहले उसने जो पेरेंट्स से सीख लिया, सीख लिया, उसको कोई नहीं बदल सकता जब तक वो खुद अपनी मेहनत ना करे। और हमें कब रियलाइज होता है कि बच्चा हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है, या मेरी बात नहीं मानता है, या अपनी मर्जी करने लगा है? कब रियलाइज होता है? जब वो टीनेजर होता है, 11, 12, 13, बोलते जवाब दे रहा है। अब पहले तो हर बात मान जाता था, अब जितना मर्जी सिखा लो और जितना मर्जी हम अपने आप को ठीक कर ले। कई बार तो ये कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है हस्बैंड वाइफ की कि तुम्हारी वजह से खराब हुआ है, और वो कहती है तुम्हारी वजह से हुआ। और इससे क्या हम समझते हैं एक दूसरे को ब्लेम करके हम बच्चे को ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं? तुम्हारी वजह से? कहते अच्छा अच्छा चल आ जाओ मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाता हूँ। सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, अपने आपको धोखा नहीं दीजिए। मैं पहले उसको बर्बाद कर चुका हूं जब वो 5 साल से छोटा था, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए पेरेंट्स को ट्रेनिंग पहले चाहिए, शादी से भी पहले, बेबी की डिलीवरी से भी पहले, बेबी के बाहर आने से भी पहले। अभी लेटेस्ट आ गया ना गर्भ संस्कार, और हमारे इधर ही मेडिकल विंग का एक टॉपिक है डिवाइन गर्भ संस्कार। अगर आप चाहते हो कि बच्चा अच्छा निकले, तो आपको जब वो बाहर आए ही नहीं है उससे पहले उसको सारी ट्रेनिंग दे दीजिए। अभी मनियों का तो एग्जाम्पल है। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपनी लाइफ के अंदर राजयोग समझना, प्रैक्टिस करना, औरों को समझाना, और औरों को समझाने से पता लगता है मेरे में कितना है। तो ये बहुत बहुत जरूरी जरूरी बातें हैं, और आप लोग शायद बड़े ही भाग्यशाली हो कि नहीं हो, है? क्योंकि हमें पता लग गया है तो हम अपने जीवन में इसको अप्लाई करें, और अप्लाई करके दूसरों को बांटना शुरू कर दें। यहां से कुछ सीख के जाएं। क्या सीख के जा रहे हैं हम यहां से? क्या सीख के जा रहे हैं? मैं आत्मा हूं, तो इससे बोर तो नहीं हो जाएंगे? हाँ जी, और क्या सीख के जा रहे हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वी आर स्टूडेंट्स। किसके स्टूडेंट? तो सीखना है ना, तो कभी भी घर में कोई बात हो जाए, समाज में कोई बात हो जाए, रिश्तेदारी में कोई बात हो जाए, कहीं भी कोई बात होती है, हर जगह समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार कुछ ना कुछ। दो व्यक्तियों का संस्कार नहीं मिल सकता, ये तो एक रूल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। जितनी मर्जी कुंडलियां जो भी मिलाना चाहो मिला लो, कभी नहीं मिल सकता। तो करना क्या होएगा? ऊपर में ऊपर नीचे बात होनी ही होनी है। और उसके बाद क्या करना है? बात हो जाए तो कितनी जल्दी खत्म करनी है वो बात? कितनी जल्दी, कितनी जल्दी? एक सेकंड में उसके लिए क्या चाहिए, फुल स्टॉप कैसे लगेगा? मन के अंदर फुल स्टॉप है ना। कौन से तीन फुल स्टॉप है हमारी लाइफ के अंदर पता है आपको? एक है मैं आत्मा हूं, किसी ने बोला अभी। दूसरा कौन है, मैं किसका बच्चा हूं? परमात्मा का। तो परमात्मा कौन है? सर्वशक्तिमान। परमात्मा कौन है? जो इस दुनिया को चलाता है। परमात्मा में इतनी पावर्स है, कैसे कैसे कोई चला लेता, हम तो एक फैमिली नहीं चला पाते, और वो तो कैसी दुनिया चला रहा है और सबको एक्यूरेट दे रहा है, अच्छे का अच्छा बुरे का बुरा, उससे बड़ा न्यायकारी तो फिर क्या करना होगा, है ना। दूसरा फुल स्टॉप, मैं भगवान का बच्चा हूं। और तीसरा फुल स्टॉप कौन सा है? इस दुनिया में जो हो रहा है ड्रामा में, वो पहले से डिस्टाइंड है, पिक्चर पहले से बन के आई हुई है। कहते जो होता है, जो होनी होती है वही तो होता है। तो वो ड्रामा का फुल स्टॉप। क्यों ड्रामा का फुल स्टॉप? क्योंकि जो हुआ है मेरे लिए कल्याणकारी है। वो जो मुझे नौकरी का निकालने का ऑर्डर आया था, वो कल्याणकारी था कि नहीं है? वो लेटर कभी आज तक किसी को पता ही नहीं, मैंने कभी जवाब ही नहीं दिया, मुझे मालूम ही नहीं। उसका लेटर का जवाब ये है कि जिस बॉस ने ये लेटर निकाली थी, वो तो रिसर्च का पार्ट बन गया। वो मुझे कहता था और कुछ नहीं कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, हो रहा है राजयोग में। उसने इतना बड़ा कमरा दे दिया, सब कुछ उसके अंदर कर दिया, मेडिटेशन बना दिया, सब कुछ बोला। और जब वो लास्ट में डायरेक्टर ऑफ एम्स बन गया, तो मुझे फोन करता है, मुझे माउंट आबू कब ले जा रहे हो? तो जब हॉस्पिटल के काफी लोग माउंट आबू गए, काफी लोग। अच्छा, मैंने बोला हाँ चल अरेंज कर रही हूँ। तो फिर उसको भेजा गया, वो आया विद फैमिली विद इन लॉज, सबको लेके आया, और यहाँ आके तीन दिन रह के गया ये वाला, वो बॉस देखिए। और सबको कहता था इनको माउंट आबू ले जाइए, ये ऐसे बात करते हैं। इसलिए कभी किसी बात में घबराओ नहीं, जो होता है ड्रामा मेरे लिए कल्याणकारी है। मुझे कल्याण ढूंढना आना चाहिए और उसके ऊपर जंप लगाना चाहिए। तो याद रखना, जिंदगी क्या है? एक हॉर्स रेस है। कभी देखी किसी ने हॉर्स रेस? देखिए किसी ने हॉर्स रेस कैसे होती है? आदमियों की रेस कैसी होती है? हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर। हॉर्स रेस में सारे रास्ते में या खाई आएगी या रॉक्स आएंगी या पानी आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, और उसके ऊपर जंप लगाना होता है। तो हमें भी जिंदगी में जो सिचुएशन आती है उसके ऊपर जंप लगाना है, और ऐसा अच्छा जंप लगाना है, इतना पॉजिटिव, इतना अच्छा। और रोज की मुरली जो सुनेंगे आप जाके अपने वहां पे, रोज की मुरली में रोज का लेसन आ जाता है कि मुझे जंप कैसे लगाना है। आज की मुरली में था किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी की सुनी सुनाई बातों में। तो रोज की मुरली में एक तो ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें यहाँ पे फिट कर लेने हैं, और जितने वो मेरी आत्मा में फिट हो जाएंगे, रोज एक पॉइंट, रोज एक पॉइंट, रोज एक पॉइंट, तो जो बाकी हमारे पुराने संस्कारों के पॉइंट, वो सारे धीरे 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 फेड होने शुरू हो जाएंगे। और जितना योग लगाएंगे वो फेड क्या, वो भस्म भी हो जाएंगे। तो इजी है ना लाइफ? मेरे लिए तो बहुत इजी रही, हर जगह इजी है। जहां जाती हूँ मैं कहती हूँ, और अब इसका नाम मेडिटेशन नाम जो रूम बन गया है उसका नाम हो गया हीलिंग लैब्स। एंग्जाइटी के पेशेंट, डिप्रेशन के पेशेंट सारे ठीक हो जाते हैं, पर वो शक्ति हमारी नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं है। सबसे बड़ा डॉक्टर परम पिता परमात्मा, जिसका कार्य चल रहा है, उस कार्य में सब कुछ हम भाग्यशालियों का होना ही है। तो कभी ये ना सोचो मैंने किया, कराने वाला करा रहा है। मुझे खुशी है कि वो हमको यूज करता है इस पर्पस के लिए, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरी थोड़ी सी अनुभवों को सुना, और आप सब भी जीवन में बहुत अनुभवी होंगे, और भी अनुभव बढ़ाइए, और भगवान का शुक्रिया करते हुए थैंक यू सो मच। ओम शांति।